नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। भारत और दक्षिण कोरिया का 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य। एआई, सेमीकंडक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी में साझेदारी को बढ़ाने के लिए डिजिटल ब्रिज का शुभारंभ। भारत और अमेरिका का वाशिंगटन में व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। और 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप से जापान का सानिरुकी तट हिला। इवाते प्रांत में सुनामी की चेतावनी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ वार्ता के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
भारत और कोरिया का बायलेटरल ट्रेड आज 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल फ्लोस को सुगम बनाने के लिए हमने भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 4 समझौते किए हैं जो दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक तनाव के इस दौर में दोनों देश शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं।
8 वर्ष बाद कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में भारत कोरिया व्यापार मंच में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोरियाई राष्ट्रपति की यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
हम व्यापक आर्थिक साझेदारी को उन्नत करने के लिए तेजी से काम करने पर सहमत हुए हैं। इसके तहत हम कई गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करेंगे, दोनों देशों के बीच व्यापार करना आसान बनाएंगे और दोनों देशों में नए अवसर खोलेंगे ताकि हम एक अधिक संतुलित आर्थिक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ सकें।
टूवर्ड्स अ मोर बैलेंस्ड इकोनॉमिक पार्टनरशिप।
श्री गोयल ने कहा कि भारत और कोरिया के बीच हजारों वर्षों पुराना एक दीर्घकालिक संबंध है जो विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और गहरे सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोरियाई कंपनियां उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके भारत के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत स्थिरता का एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले भारत के 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन में व्यापार वार्ता का एक नया दौर शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। भारतीय अधिकारियों का एक दल 20 से 22 अप्रैल तक निर्धारित 3 दिवसीय वार्ता के लिए अमेरिका पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन कर रहे हैं। उनके साथ सीमा शुल्क विभाग और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। भारत का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह अमेरिका का दौरा करेगा। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने इस दौरे को द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच लाभकारी कहा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद पूरे देश में घरेलू एलपीजी आपूर्ति स्थिर है और वितरकों में किसी भी तरह की कमी की सूचना नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
एशिया क्राइसिस के चलते देश में एलपीजी सप्लाई अफेक्ट हुई है और सरकार ने इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीरियड ऑफ बुकिंग को अर्बन और रूरल एरियाज में इंक्रीज किया है, इसके अलावा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का इम्प्लीमेंटेशन करना।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल सऊदी अरब में कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की।
During his visit, he held...
यात्रा के दौरान उन्होंने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री तथा अपने समकक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठकें की। इन बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई, साथ ही क्षेत्रीय परिस्थितियों और अन्य आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान भी हुआ।
वहीं पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के निदेशक मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर देश गरिमा ने 97,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल को लेकर 18 अप्रैल को होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर आज इस्लामाबाद में अनिश्चितता बनी हुई है। अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह का संघर्ष विराम बुधवार को समाप्त होने वाला है। ईरान ने कहा कि अभी तक ये तय नहीं है कि ईरान अमरीका के साथ वार्ता के अगले दौर में भाग लेगा या नहीं। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका की नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहे एक ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ये हमला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ संभावित वार्ता के लिए अपनी टीम को इस्लामाबाद भेजने की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुआ है। उत्तरी जापान के तट के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। दोपहर 4:53 पर आए इस भूकंप का केंद्र उत्तरी जापान के सनरिकु तट के 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। जापान मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। जापानी अधिकारियों ने भूकंप की तीव्रता को संशोधित करके 7.7 कर दिया है। इससे पहले इसकी तीव्रता 7.4 बताई गई थी। इवाते प्रांत के कुजी बंदरगाह पर लगभग 2.6 फीट ऊंची सुनामी आई, जबकि प्रांत के एक अन्य बंदरगाह पर 1.3 फीट ऊंची सुनामी दर्ज की गई। विभाग ने निवासियों से तट या नदियों के किनारे से ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने का आग्रह किया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 200 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 9वें ओवर में 5 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में गुजरात छठे और मुंबई 10वें स्थान पर है। पंजाब पहले और बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। हैदराबाद में कल शाम 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की 2 दिवसीय श्रीलंका यात्रा आज संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान परस्पर संबंधों और विकास से जुड़े सहयोग को निरंतर मजबूती देने पर बल दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और दक्षिण कोरिया का 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य। एआई, सेमीकंडक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी में साझेदारी को बढ़ाने के लिए डिजिटल ब्रिज का शुभारंभ। भारत और अमेरिका का वाशिंगटन में व्यापार वार्ता का नया दौर शुरू। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। और 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप से जापान का सनरिकु तट हिला। इवाते प्रांत में सुनामी की चेतावनी जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।